ओम शांति वर्णि। हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि चलते चलते जो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड है वो कम क्यों हो जाती है, प्रोग्रेस ढीला क्यों हो जाता है। अवस्था में जो पहले परिवर्तन जिस गति से आ रहा था उसमें फर्क क्यों पड़ जाता है। दिन ब दिन जो ज्यादा अच्छे अनुभव हो रहे थे वो फिर उनकी मात्रा उनकी डिग्री कम क्यों हो जाती है, ये प्रश्न आमतौर से भाई बहनों के मन में रहता है कि हम नियम पूर्वक तो चल रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। जिसको बाबा कहते हैं कि स्वयं से भी सेटिस्फाइड हो, तो स्वयं से सेटिस्फाइड नहीं। जो हमारे सामने लक्ष्य है कि ये पद हमको प्राप्त करना है, और जब हम स्वयं में देखते हैं फर्क है, गैप है, तो फिर ख्याल आता है कि ये गैप कैसे कब पूरा होगा। टाइम तो निकलता जा रहा है, तो कुछ बातें उसमें से सामने आई थी कि पोस्टपोन मत करो, जीवन कब समाप्त हो जाएगा ये पता नहीं है, इसलिए ये मत समझो कि विनाश में बहुत टाइम पड़ा है, इसको उस सोच कर ढीला मत करो, इत्यादि इत्यादि और बातें भी निकली थी। एक बात जो दूसरी हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है वो है जब हम दूसरों को देखते हैं, अपने साथ जो और बहन भाई हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि काफी टाइम उनको हो गया है और उनका जीवन भी कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है, कमियां हैं, काफी कमियां हैं, अभी तक पूरे संस्कार बदले नहीं है उनके इतने टाइम में, तो फिर व्यक्ति समझता है कि हम तो बाद में आए हैं, हमें तो थोड़ा टाइम हुआ है, इसलिए अगर नहीं हुआ कुछ परिवर्तन ज्यादा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो औरों के ढीलेपन को देखकर ढीले हो जाते हैं, गलत सीखते हैं, दूसरे ढीले हो गए हैं तो हम कोई उनके फॉलोअर तो नहीं है, वो हमारे लीडर तो नहीं है, हमने उनके आधार पर तो नहीं चलना है, इसलिए ये बात गलत जो मन में आ जाती है कि और भी तो ऐसे चल रहे हैं, फलां व्यक्ति को इतना टाइम हो गया है ज्ञान में आए हुए, उसमें भी तो अभी फलां खराब संस्कार है, तो टाइम लगता है, कोई एक दिन का काम आसानी का काम नहीं है, ये सोच के पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं। पहले पहले जब आते हैं ये सब देखा नहीं होता है और ये ख्याल में आता है टाइम कम है और हमें जल्दी गैलप करना है, पुरुषार्थ को जल्दी करना है, और फिर जब आप दूसरों को देखते हैं तो ढीले हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर सी मदर, बच्चों आपस में एक दूसरे को देखो मत, और पीछे वालों को तो मत देखो जो पीछे हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ ठीक नहीं किया उनको मत देखो, आगे देखो। पुरुषार्थ करने वाला आगे देखता है कि मुझे आगे भागना है, पीछे देखोगे तो टाइम निकल जाएगा। इसलिए ये जो गफलत हम कर बैठते हैं कि दूसरों को देखने में लग जाते हैं और उनके कारण से रुक जाते हैं। आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी, हेयर एंड ए टॉर्टॉइस, सुनी हुई है ना, कि खरगोश बहुत तेज भाग सकता था और पहले पहुंच सकता था। दोनों की रेस हुई और खरगोश भागा। देखा वो जो कछुआ है वो तो बहुत बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है। तो बोलता है थोड़ा सो लूं, रेस्ट कर लूं, उसको तो बहुत टाइम लगेगा, और जब तक वो आएगा फिर भाग के मैं आगे पहुंच जाऊंगा, उसका तो कोई मेरे से मुकाबला ही नहीं है। तो सो गया। इसलिए उर्दू में कहावत है ख्वाबे खरगोश, खरगोश की तरह से सो जाना। सोते तो कई हैं, लेकिन खरगोश की तरह से सो जाना और स्वप्न देखना कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो इसलिए हम भी सो जाएं। ये गफलत करते हैं जब हम, तो पीछे वाले भी आगे निकल जाते हैं। आप लोगों के देखते देखते कितने ऐसे हैं जो बाद में आए ज्ञान में और आगे निकल गए। छोटी छोटी कन्याएं माता पिता के साथ आती थी, पढ़ती थी, बेबीज थी। आप उनको प्यार करते थे, बेबी कैसे है, ठीक हूँ अंकल, ठीक हूँ, ऐसे बेबीज थी। और आज वो टीचर थे, बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े जोन संभालते हैं। हम और आप भी स्टूडेंट हैं उनके, वो हमारे टीचर थे। वो आगे बढ़ गए, निकल गए, जिसको हम बेबी कहते थे, और हम बेबी बन गए खुद। उल्टा हिसाब हो गया, क्या नतीजा हुआ। तो पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि दूसरों को देखते हैं कि ये अभी इनकी रफ्तार कम है, तो अपनी रफ्तार को ढीला कर लेते हैं। हॉर्स रेस देखी होगी आपने, बहुत सारे घोड़े ढीले हो जाते हैं और कई आगे निकल जाते हैं। अगर वो ये सोचें कि ये ढीले हैं, कोई बात नहीं, इनके साथ साथ चलते हैं, हमारा घोड़ा भी थोड़ा दम ले ले, थकावट दूर हो जाए, ताजा हो जाए, और फिर आगे भाग लेंगे, तो गलत फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी गलत है। बहुत सारे फिलॉसफी, वो कहते हैं ना भाई, एक व्यक्ति था, बड़ा मैथमेटिशियन था, हिसाब किताब जानता था। तो रास्ते में छोटी सी नदी आई, नदी पार करनी थी, पार करनी थी, नदी में पानी था, नदी तो होती पानी की है। तो उसके साथ एक छोटा बच्चा था, एक बच्ची थी, वाइफ भी थी, खुद भी था। तो हर एक का कद तो अलग अलग होता है। तो कहता है ये नदी पार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, मैथमेटिशियन था ना, तो हिसाब लगाने लगा, पार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो उतर के देखा पानी में कितना पानी है, कहता है 5 फुट पानी है। खुद तो 5 फुट 9 इंच का था, चलो मैं तो निकल जाऊंगा, थोड़ी तक पानी आएगा। फिर जितना भी था हिसाब लगाता है, बच्चे का इतना, बच्ची का इतना, वाइफ उसकी जरा लंबी थी, उसका इतना, लंबी क्या थी, लंबूतरी थी, समझा, बच्चा, बच्ची, वाइफ और खुद, चारों का ऐड कर दिया, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, इतना टोटल करके एवरेज निकाल ली उसकी, एवरेज पढ़ा हुआ था ना मैथमेटिक्स, जरा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो कहता है निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। ये नहीं सोचता कि छोटा बच्चा तो डूब जाएगा, वो कैसे निकलेगा, एवरेज लगाने से छोटा बच्चा बच जाएगा क्या, कहता है सब निकल जाएंगे। तो जब उतरे पानी में डूब गया, कुंभा सारा डूब गया। तो इसलिए कहावत मशहूर है, औसत झूकी तू कुंभा डूबा क्यों। उसका कुंभा क्यों डूब गया, औसत तो ठीक लगाई थी, हिसाब तो ठीक किया था, फिर भी कुंभा डूब गया। तो ये कई मैथमेटिक्स ठीक नहीं होते, कई फिलॉसफी भी ठीक नहीं होती, सोचने का तरीका गलत होता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ढीले चलें, दूसरे ढीले चल रहे हैं। ढिलम प्रसाद कभी मत बनो, अपना नाम चेंज मत करो, नहीं तो आपका नाम हो जाएगा ढिलम प्रसाद। बिहार में बहुत ज्यादा प्रसाद होते हैं, राजेंद्र प्रसाद, फलाना प्रसाद, प्रसाद बहुत खाते होंगे शायद, तो हम भी कई ढिलम प्रसाद हो जाएं, ऐसा नहीं हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखो। दूसरी बात क्या है, चलते 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 ये मंजिल है, ये रास्ता बड़ा लंबा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जब बाबा साकार में थे तो आम तौर से ये बजाया जाता था, क्योंकि हम रात के राही हैं। ये कलयुग जो है ये रात है, अज्ञान की रात है, ब्रह्मा की रात है, तो इसमें हम राही हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे थक मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। एक जो विघ्न रास्ते में ये आता है वो थकावट का आता है, थक जाते हैं, उससे उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थोड़ा सा और चलना है बस, वो देखो मंजिल हमारे सामने है, वहां जाके झंडा गाड़ देंगे। एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट के नजदीक, चोटी के नजदीक पहुंच जाए और वहां नजदीक पहुंचकर उसका दम टूट जाए, आगे चलना बंद हो जाए, थकावट हो जाए ज्यादा, तो फिर रुक जाए, उसके बाद क्या होगा क्या पता है। कोई हवा के तेज झोंके आए या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो या ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एक दफा झंडा गाड़ दें वहां पर पहुंच के अपने देश का, कई लोगों ने ऐसे किया, तो हम थक ना जाएं, ये थकावट आएगी। इतनी मुद्दत से चल रहे हैं, रोज योग लगाओ, रोज योग लगाओ, रोज क्लास में जाओ, रोज ये सारा पुरुषार्थ करते रहो, कब तक, उम्र बीत गई। तो ये साधना का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, मेहनत का मार्ग है, लेकिन इसमें बड़ा मजा है, बहुत आनंद है, बड़ी खुशी है। इससे तो एनर्जी मिलती है, थकावट दूर होती है। जिन्होंने ये अनुभव किया है वो जानते होंगे, खुद मुझे अनुभव है। शुरू शुरू में जब यज्ञ में भाई बहुत कम थे तो अकेले एक एक भाई कितने भाइयों के बराबर काम करते थे, और जब हम थके हुए महसूस करने लगते थे, दो मिनट अगर लेट जाते थे बाबा की याद में, तो ऐसा लगता था कि कोई थकावट है ही नहीं, जिसको बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों की मालिश कर देता हूं। वो योग ऐसी चीज है, अव्यक्त स्थिति ऐसी चीज है, देह से न्यारा होने से सारा नर्वस सिस्टम हमारा रिलैक्स कर जाता है। जितना मैसाज से, एम्ब्रोकेशन से व्यक्ति का नहीं फायदा होता है, उतना योग से फायदा होता है। तो किसी को अगर हम ये कहने लगे योगा इज बेटर देन मैसाज, तो वो शायद जो मैसाज कराने वाले हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो आने लगेंगे। लेकिन योग के फायदे तो बहुत हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी, तन की भी, मन की भी। तो ये एक सूक्ष्म रूप से जो हमारा विघ्न है, थक जाना, इस बात का ख्याल करना चाहिए। इसका अगर हमें अनुभव होता है कि हम थक रहे हैं, तो समझना चाहिए कि कोई हमारे योग में त्रुटि है, ज्ञान लेने में कोई त्रुटि है। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर कोई क्लास में बैठे हुए यानिंग करता है, उबासियां लेता है, तो समझो कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, उसको नींद आ रही है, समझ नहीं रहा है। ऐसे ही अगर इस लाइफ में चलते चलते हमें थकावट आती है तो समझना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ में कोई त्रुटि है, कमी है, कहीं ना कहीं कोई नुक्स है। वरना यह तो इतना एंटरटेनिंग है, इतना अम्यूजिंग है, अम्यूजमेंट लोग करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, खास उन सबसे श्रेष्ठ तो ये है, हर प्रकार से इससे लाभ होता है। तो अगर हमें आनंद, शांति, शक्ति, एम्पावरमेंट महसूस नहीं होती, थकावट महसूस होती है, तो चेक करो, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है, खराबी है। फिर आप देखोगे कि ऐसा नहीं है, ये तो इतनी गहराई है, इतना गहराई है कि जितना इसकी गहराई में जाओ उतना रतन मिलते हैं, जितना योग में टिको उतनी शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, थकावट की क्या बात है। उसका तो चेहरे पर कोई चिन्ह ही नहीं आना चाहिए, मस्तक में सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो ये एक रास्ते में जो विघ्न आता है, इसके प्रति हमें सावधान सावधान, ये दुश्मन है हमारे सब। क्योंकि जब कभी देश को खतरा होता है, जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो कुछ इलाके में मुसलमान थे, कुछ इलाके में हिंदू थे, हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया, मुसलमान लोग हिंदुओं पर हमला करते थे, एक दूसरे की हिंसा कर रहे थे, मनुष्य मनुष्यता को छोड़ चुका था, दरिंदा जैसे पशु होता है, शिकारी पशु बन चुका था, एक दूसरे का खून बहाना, आंखें बदल गईं, निगाह बदल गई, वृत्ति बदल गई, स्वभाव संस्कार बदल गए, संबंध बदल गए। देखने वाला था कि इंसान क्या बन सकता है, असुर से भी गिर सकता है। तो किस वक्त भी कोई मुसलमानों का काफिला आकर या हिंदुओं का गिरोह जाकर हमला करेगा, तो युवा लोगों को पहरे पर बिठाया जाता था कि ध्यान देना, अगर वो आए तो सबको जगाना, आवाज लगाना। उसके लिए लोगों ने तैयारी कर रखी थी अपने बचाव के लिए। तो वो हमेशा यही बीच बीच में कहते रहते थे, सावधान सावधान, जो पहरे पर होते थे, सावधान, खबरदार, होशियार, खबरदार, होशियार, ख्याल रखो। तो ये जो हमारा मार्ग है, इसमें भी खबरदार, होशियार। ये थकावट अगर आ गई, इसने हमला कर दिया तो गए। कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा हो, उसको नींद आ जाए, अगर हिमालय पर इतना ऊंचा चढ़ चुका हो, गिरेगा तो उसकी तो हड्डी पसली मिलेगी नहीं, क्या नतीजा होगा, कचूमर निकल जाएगा, सुरमा बन जाएगा, सुरमा उसका, पता लगेगा ये कौन आदमी है, कौन आदमी नहीं है। तो इस तरह से ये थकावट ऐसी खराब चीज है, मत इनको कम मत समझो। जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कम नहीं है, जैसे वो बिजली के उस पर लिखा होता है डेंजर, लिखा होता है डेंजर, और दो हड्डियां क्रॉस कर रही होती हैं, लगता तो ऐसे है जैसे बाजू की हड्डियां हो, यहां के शक्ल तो उनकी ऐसी बनाई होती है, और इतने हजार वोल्ट लिखा होता है। तो बच्चे लोग समझते हैं कि अगर इसको हाथ हमने लगा दिया तो उड़ जाएंगे, बाहर से ही अगर हाथ लगा दिया तो, क्योंकि डेंजर, और उसमें शक्ल बनी हुई होती है चेहरे की, हड्डियों के अलावा, जिसमें चेहरे में ना तो आंखें हैं, ना चेहरे पर मांस है, सिर्फ खोपड़ी खोपड़ी बनी हुई होती है, कि अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो सिर्फ खोपड़ी रह जाएगी, बाकी सब खोया जाएगा, डराने के लिए ये ऐसा होता है। और फैक्ट है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर उसमें होती है, तो ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये उतने हजार वोल्ट की डेंजरस चीजें हैं। सिर्फ हड्डी कंधे की रह जाए, बाकी तो पता नहीं, खोपड़ी। तो ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का। ये थकावट, थकावट, थकावट आ गई तो गिरावट आ गई, ये समझ लो। हमेशा फ्रेश रहना है। कईयों को हमने देखा है, बुजुर्ग हैं बहुत, एज बहुत बड़ी है, दे आर ऑलवेज फ्रेश। इसलिए बाबा कहते हैं अलर्ट, इलास्टिक और अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो, एवर रेडी रहो और अलर्ट रहो। तो ये आलस, आलकस जिसको कहते हैं, वो ना हो और थकावट ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे परिस्थितियां बदलती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी परिस्थितियां सदा एक जैसी रहती हों, नहीं। राजाओं के राज छिन गए, जो छत्रपति राजा थे जमीन में दबे पड़े हैं, क्या हालत हुई उनकी, कल तक क्या थे आज क्या हुआ, उनका तख्ता उलट गया, राज छिन गए। तो ऐसे हर एक के साथ जीवन में होता है कि बदलता है, कैलेंडर बदलता है, डेट बदलती है, तिथि तारीख बदलती है, घड़ियां समय बदलता है, तो जो ग्रहचारी है वो भी बदलती है। कभी कभी राहु केतु बैठ जाता है, जो काम करो उल्टा ही होता है, उसका परिणाम खराब ही निकलता है। तो व्यक्ति के अंदर में आता है कि क्या बात है, हम जो कुछ करते हैं उल्टा ही पड़ रहा है, सोच समझ के करते हैं लेकिन रिजल्ट उसका दूसरा निकलता है, सोचा कुछ और था हुआ कुछ और। तो ये परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, ये गारंटी नहीं है, बल्कि गारंटी ये है कि परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। इसलिए आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनसे आपको स्ट्रेस अनुभव हो, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस आएंगे उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। केआस मैनेजमेंट, केआस होगी, सब चीजें अस्त व्यस्त होंगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ये दुनिया ही ऐसी है, बदलने वाली, क्षण क्षण में, पल पल में, गिरगट की तरह से इसके रंग बदलते हैं और इतने जल्दी बदलते हैं कि इंसान को पता नहीं। कोई गवर्नमेंट का लाभ बदलता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, कोई प्रकृति की आपदा आती है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, कोई शरीर की व्याधि अचानक से आ जाती है, ना चाहते हुए भी आ जाती है, आ गई है, गले में पड़ गई, क्या करेंगे, वो उसको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक के सामने कोई ना कोई परिस्थितियां बदलेंगी। घबराना नहीं, ये क्या हो गया, ऐसा तो अज्ञान काल में भी नहीं हुआ था, ऐसा तो भक्ति वालों का भी नहीं होता। हमसे तो वो लोग अच्छे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, खुशी मौज में चल रहे हैं, हम भगवान के बने और ही हमें ऐसा हो गया। ऐसे उल्टे तूफान मन में भी आएंगे, ये ना है, सावधान, खबरदार, होशियार, ये ख्याल रखो, ये माया का और रूप आ रहा है रास्ते में रुकावट डालने के लिए। बाबा ने पहले ही कह दिया है, ये लड़ाई है, मल्ल युद्ध है, बॉक्सिंग है, और जब बाबा के बनोगे तो लड़ाई तब शुरू होगी। अब तक तो माया के मुरीद बने हुए थे, स्लेव्स, माया नचाती थी, जैसे वो भारत में रीछ को या बंदर को वो रस्सी डाल के नचाते हैं डुगडुगी बजा के, इतना बड़ा रीछ और वो डुगडुगी बजा के उसको नचाता है, सास और बहू का झगड़ा दिखाता है, बंदर और बंदरिया का, वो नाचते हैं थोड़े से चने खाने के लिए, वो बंदर और बंदरिया सास और बहू बन के लड़ाई करते हैं तमाशा दिखाने के लिए। तो ये सब होता है, स्लेव्स बने हुए थे हम, नाक में नकेल डाली हुई थी। पहले वैसे ही नाक में नकेल बहुत डाली जाती थी। इतनी बालियां पहनते थे हे भगवान, कितने छेद करते थे। अभी तक भी आप देखिए तिब्बत की कई लेडीज हैं, उनके कान में इतना वो बालियां होती हैं, बारी बारी हाथी दांत की कई चीजें, हाथी दांत तो भारी होता है, उसकी लटकी हुई, कान यहां से यहां तक आ जाता है, सारा लटक जाता है, हैं? कहते हैं ऐसे ऐसे जेवर को जारिए जिसने दिए कान काट, कान काट जाए जेवर पहनना है, बालियां पहनी हुई हैं, अजीब बालियां हैं, अजीब किस्म के श्रृंगार थे, जो आदमी का कान भी कहां से कहां चला जाए, दुकान में चला जाए कान की बजाय, क्या उसका रिजल्ट रहता था। तो हम भी ऐसे स्लेव्स बने हुए थे, स्लेव्स। तो बाबा ने कहा है इसलिए पहले तो बात ही नहीं थी, आप स्लेव्स थे, माया के मुरीद थे, बॉन्डेड लेबर थे, बॉन्डेज में, और अब जब कहोगे माया को चैलेंज करोगे, लड़ाई तब शुरू होगी, जब विश्व के राज की बाजी लगाओगे, कोशिश करोगे कि मैं वो बनूं, तो मासी जी का घर नहीं है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, वो हिंसक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई, ये इसलिए आप स्पिरिचुअल आर्मी हैं, ये युद्ध तो करना पड़ेगा, ये युद्ध इस वक्त सब सेना में हैं। बाबा हमेशा ये पॉइंट बाबा को बहुत अच्छा लगता था, साकार बाबा को, और वो बार बार कहते थे ये सबको बताओ कि सारे दुनिया सेना में है, कोई आदमी आपसे मिलता है उसको पूछो तुम किस सेना में हो, कहेगा मैं सेना में कहा हूं, मैं कोई शिवसेना में तो हूं नहीं, भारत में तो आजकल शिवसेना बनी हुई है, बाद में बनी थी, मैं तो किसी सेना में नहीं हूं, मैं तो दुकानदार आदमी हूं। अरे नहीं, तुम दुकानदार है या रिटायर्ड है, सेना में है। कैसे? बाबा कहते हैं कोई कौरव है, कोई पांडव है, कोई यादव है, इन तीन से बाहर कोई है? जो देह अभिमानी है वो कौरव सेना में है, जो वैज्ञानिक है और विनाश के साधन बना रहा है, उल्टी बुद्धि से काम कर रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो यादव है, और जो देही अभिमानी है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है, वो पांडव है। तो किसी न किसी सेना में तो जरूर है, है कोई ऐसा जो इस सेना में ना हो? इस सेना में तो हर कोई होता है। कई दफा तो अजीब बात हो जाती है, एक मैंने शायद आपको बताया था, एक क्लास में स्टूडेंट जाता था, बाबा की मुरली में आया कि बाबा ने कहा कि सेना में भर्ती हो जाओ, वो दूसरे दिन ही जाके भर्ती हो गया, फौज में भर्ती हो गया, उसके बाप को पता लगा मेरा बेटा भर्ती हो गया, तो लड़ाई चाइना के साथ शुरू हुई थी, तो कहता है मेरा बेटा भर्ती हो गया, उसको बोला तू लड़ाई में क्यों जाके मरेगा क्या, इकलौता बेटा है मेरा, और कोई मेरा वारिस नहीं है, है मेरे को कौन संभालेगा, किसने तेरे को उल्टी मत दी है? कहता है भगवान वाच, मुरली में था भगवान वाच, कहता है भगवान ने कहा है तुम भर्ती हो जाओ, मैं भर्ती हो गया, मैं आपकी मानूं या भगवान की मानूं? उसने कहा भगवान तेरे से डायरेक्ट बातें करता है, ला मेरे से उसकी बात कर, कहा है तेरा भगवान, मैं भी जरा बात करूं उससे। कहता है वो तो सेंटर पर आता है, उसने कहा अगर सेंटर पर भगवान आके यही बातें कहता है कौन सा तेरा सेंटर, चल वहां पर। तो वहां गया, वहां जाके किसने तुम्हें कहा है, कहाँ है भगवान? तो कहता है बहन जी इनको वो मुरली सुनाओ भगवान की। उसने कहा कौन सी मुरली? उसमें लिखा था ना कि सेना में भर्ती हो जाओ, वो मुरली सुनाओ इनको, हमारे पिताजी को। तो उसने कहा इनको क्या पता, ये क्या सुन के करेंगे? उसने कहा मेरा तो घर ही तबाह हो गया, मेरा बेटा जाके भर्ती हो गया, आपने क्या इसको पाठ पढ़ाया है, किसी से पूछना तो चाहिए। आप इसको कहो, ये कहता है भगवान ने कहा है, हमारी मानता नहीं है। तो उस टीचर को कुछ ख्याल में नहीं है, उसने कहा कब कहा है, किस मुरली में है, है ही नहीं, ये ऐसे गलत कहता है। कहता है नहीं बहन जी है, आप पढ़िए, उस मुरली में है। उसने पढ़ा मुरली, मुरली पढ़ी तो एक जगह पर आया, कोई कौरव में है, कोई पांडव में है, कोई यादव में है, तुम जो है भर्ती हो जाओ। वो था तो सही, लेकिन वो पांडव सेना में भर्ती होने के लिए था, वो जाके उस हिंसक सेना में भर्ती हो गया है जी। ऐसे भी होते हैं लोग। तो हम पांडव सेना में तो हैं, भर्ती तो हुए हुए हैं। अब जब हमने चैलेंज किया है माया को, अब लड़ाई शुरू है, अब लड़ाई शुरू है। वी आर एट वार विद माया, बाबा कहते हैं वी आर एट वार विद माया, माया से हमारी लड़ाई है, ठनी हुई है। तो इसलिए इसमें ये सब बातें आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, उनसे युद्ध करके पास होना है, विजयी बनना है, कभी भी घबराना नहीं है। आगे फिर इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।